ओम शांति। जब हम सकाश की बात करते हैं, सकाश शब्द के अगर अर्थ में ही हम उतर जाएं, सकाश का अर्थ है आत्मा के जो सात एनर्जी हैं, आत्मा के जो सात गुण हैं, उसके प्रकाश का हम उसके प्रकाश को हम यूज करते हैं। किस पे यूज करते हैं? पहले तो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पर यूज करते हैं। शरीर पर, शरीर जो हमारे पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, इस पर हम यूज कर सकते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों पर यूज कर सकते हैं। किसी भी समस्या के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। जब सतयुग था, आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, सतो प्रधान थी। सतो प्रधान का अर्थ क्या है? सतो मन सात, प्रधान सात से भरपूर थी, सातो एनर्जी से भरपूर थी। तो आत्मा के पास जो तीनों सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि मन और संस्कार, वो भी सातो एनर्जी से भरपूर थे। वहां पर बुद्धि जो थी सतो प्रधान थी, मन भी सतो प्रधान था और संस्कार भी सतो प्रधान थे, अर्थात सातों एनर्जी से भरपूर थे। बुद्धि भी कमल के समान न्यारी प्यारी थी, मन भी कमल के समान न्यारा प्यारा था। कमल पुष्प के कहते न्यारा प्यारा, क्योंकि इतनी संपूर्णता थी कि कमल पुष्प के समान न्यारा प्यारी थी। और संस्कार भी ऐसे थे जो कि एकदम कहीं भी फंसने वाले नहीं, न्यारे प्यारे। और हमारी जो पांचों कर्मेंद्रियां, वो भी सातों एनर्जी से भरपूर थी। सत्य की समझ थी, हम एक दूसरे को आत्मा देखते थे। कान हमारे, नाक, मुख, इसे कहते कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, कमल पैर, इवन हर एक कोशिका भी कमल के समान थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी, क्योंकि प्रकृति भी साथ में समय सपोर्ट कर रही थी। दासी के रूप में कैसे करती थी? क्योंकि जैसे अगर रिमोट होता ना, रिमोट में सेल हो अगर ठीक ढंग से, और सामने वाला उससे कनेक्टेड हो, टेलीविजन से या कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, तो वो उसको एक्ट करता है। आत्मा के पास इतनी सातों एनर्जी थी कि ये प्रकृति से बना हुआ शरीर और प्रकृति पे प्रकृति पांचों तत्व भी रिमोट से चलते थे। रिमोट माना वो इतने ट्रिगर्ड थे कि हमारे संकल्प से प्रकृति चलती थी। तो ये वहां का असर था। धीरे धीरे सातों एनर्जी कम होने लगी। त्रेता युग आया, 75% रह गई। द्वापर युग आया, 50% हो गई लेवल। और द्वापर युग के शुरुआत में ही एनर्जी जब कम हो गई, 49% हो गई, तो आत्मा के पास एनर्जी कम हो गई, मन के पास ज्यादा एनर्जी हो गई। आत्मा राजा नहीं रही, मन राजा बन गया, इसलिए हम मनुष्य बन गए, मन के वश में हो गए। और मन का कनेक्शन शरीर के साथ था, तो हमें शरीर दिखाई देने लगा, उससे विकार आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रवेशता हुई, और तेजी से आत्मा की एनर्जी का ह्रास हुआ और कमजोर हुई आत्मा की एनर्जी, जिससे भिन्न भिन्न तरह के रोग आ गए शरीर के अंदर। पहले मन के रोग आए, शरीर के रोग, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ, आपस में कंपटीशन कंपैरिजन हुआ, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, डिवीजन हुआ स्टेट्स का, और भारत के कई टुकड़े हो गए, अलग अलग राजाई बन गई। द्वापर युग में, त्रेता कलयुग में और ज्यादा हुई, बाहर से आक्रमण हुए, और फिर तरह तरह से प्रकृति कमजोर होती चली गई। प्रकृति को हमने मिसयूज किया, तो फिर क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ पांचों तत्वों का, उससे हमारा शरीर भी इस तरह से आज क्या हालत है? आज सबको ही रोग है, हर एक मनुष्य। मैं समझता हूं, अभी भी 2015 में एक सर्वे हुआ था, तो ये पाया गया 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। एवरेज किसी सिटी किसी भी शहर में सर्वे करो तो 100 लोगों 200 शरीर की बीमारियां हैं, और मन की बीमारियां भी हैं, मन की तो अनगिनत बीमारियां हैं। तो जब हम कहते शरीर पर प्रभाव, सकाश का शरीर पर क्या प्रभाव है? जब हम शरीर की बात करते, शरीर हमारे दो हैं, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। सत्युग में दोनों ही कंचन है, सूक्ष्म शरीर भी कंचन है और स्थूल शरीर भी कंचन है। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, क्योंकि आत्मा के पास सात एनर्जी हैं। अब आत्मा कैसे देगी वो एनर्जी शरीर को? पहली बात तो आत्मा के पास सात एनर्जी बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। बाबा कहता है ज्योत जस्ट बुझी नहीं है, किंतु प्राय बुझ गई है। प्राय जैसे ना प्राय शब्द आता है ना, एकदम उजाई हो गई, एकदम नाम मात्र जल रही है, ताकि शरीर चलता रहे, इतनी ही एनर्जी आत्मा के पास है। और अब आत्मा एनर्जी कैसे देगी शरीर को? वो मन के माध्यम से देती है। मन के हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, चार एस्पेक्ट होते हैं। मन को फिजिकल तो है नहीं, मन तो सूक्ष्म है। मन के चार पार्ट नहीं है, चार एस्पेक्ट हैं, जिसको इंग्लिश में हम टीम कह देते हैं। टीम माना टी फॉर थॉट्स माना संकल्प विचार, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, और फिर ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड माना वृत्ति, वृत्ति एटीट्यूड, और दृष्टिकोण नजरिया, और चौथी चीज है एम, एम फॉर मेमोरीज। मेमोरीज में बिलीफ सिस्टम आते हैं, आस्थाएं और मान्यताएं आती हैं, और हमारी आदतें आती हैं। तो ये जो है हमारे जो है ऐसे टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, ये मन, तो ये मन के माध्यम से आत्मा शरीर को एनर्जी देती है। मान ले आत्मा के पास ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है, अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है, और अशक्तियां हैं, वो शरीर में कैसे प्रभावित होंगी? वो प्रभावित होंगी विचारों से, संकल्पों से, भावनाओं से, वृत्ति एटीट्यूड से, और मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरी आस्थाएं क्या हैं, मेरी मान्यताएं क्या हैं, है ना। कई लोगों की आस्थाएं जैसे होती ना, कई दुनिया में तो होती ना, राहु की दशा, शनिचर की दशा, ये दशा वो दशा, आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है, आज ये है, आज वो है, उसकी शक्ल देखी, तो ये मान्यताएं आस्थाएं होती हैं। हमारी मान्यताएं, ब्राह्मणों की मान्यताएं अलग है। हमारी आस्थाएं क्या है? शिव बाबा हमारे साथ है, सर्व संबंध से हमारे साथ है, सदा साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है। और फिर हमारी आदतें क्या हैं? हमारी आदतें हैं अमृत वेला योग उठने की, मुरली सुनने की, सारा दिन बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन स्मरण करने की, सोने के पहले बाबा को हर बात बता देने की, लेटर लिख के हर बात समझा, बाबा मुझसे आज ही गलती हो गई, उसने मुझे कहा ऐसा फील हो गया, वो सब बातें लिखने की ना, बाबा को लेटर पोता मेल देने की, फिर चार्ट भरने की, घंटा घंटा याद का चार्ट भरने की, मुरली पढ़ के फिर बाबा की गोद में सो जाने की, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में सो जाने की, ये हमारी हमारी आदतें हैं, संस्कार बन रहे हैं ना। अभी जो है हमें क्या करना है? अब सूक्ष्म, जब हमने कहा सूक्ष्म शरीर, जैसे अब जब सूक्ष्म शरीर क्या है, क्योंकि दोनों की बात है, सूक्ष्म पहले बीमारी हमेशा सूक्ष्म शरीर में आती है, उसके बाद स्थूल शरीर में आती है, तो ये सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा की जो तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, यही आत्मा का यही सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि मन और संस्कार, इन तीन चीजों से बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। जब इसमें सत्य ज्ञान, सत्य की समझ है, तो ये सूक्ष्म शरीर लाइट का है। लाइट का मतलब कोई बिजली की लाइट नहीं है, उसमें रोशनी आ गई, किसकी? सत्य की रोशनी आ गई, सत्य की लाइट आ गई, वो लाइट का शरीर बन गया, हल्का हो गया। जब उसमें अज्ञान था, मैं देह हूं, देह के संबंध संपर्क का भान था, बुद्धि में था ना, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर की जो बुद्धि है वो उसका इंजन है, सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का इंजन कौन सा है? दिव्य बुद्धि। और उसका जो 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 सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है वो बिल्कुल इसके जैसा बना हुआ है, जैसे हमारा स्थूल शरीर वैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल सेम। और वो सूक्ष्म, क्योंकि हमारा मन जो है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति हमारे शरीर के हर अंग, एक एक सेल के बारे में रहती है। जरा सा कहीं हो जाए, कुछ होता है, तो हमारे विचार चलते हैं ना, भावना वृत्ति, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, कोई बता दे डॉक्टर आपको हार्ट की समस्या है, तो क्या होता है? अभी ठीक ठाक आए थे, चलेंगे तो वापस चलेंगे तो कैसे चलेंगे? मतलब ऐसे चलेंगे जैसे हार्ट का पेशेंट चलता है, अभी तक हार्ट पेशेंट जब आए थे अच्छी तरह चल फिर के आए थे, और जब चलेंगे तो कैसे जाएंगे? आपका एटीट्यूड क्या होगा? मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, उसकी चाल बदल जाएगी। किसी को पता लग जाए उसकी बीमारी के में कैंसर है, तो कैंसर वाली चाल हो जाएगी चलने चलने वाले की। कोई डॉक्टर कह दे अभी तो आप थोड़े दिन के मेहमान हैं, तो कहेंगे अच्छा बस वो फिर चलने चाल भी ऐसी हो जाएगी कि बस अब तो कि मैं गया कि गया, वृत्ति बदल जाए, एटीट्यूड बदल गया ना, है ना। तो ये जो है हमारा एटीट्यूड और ये जो है हमारी जो, तो ये हमारा जो स्मृति, स्मृति में जो चीज आ गई ना, जो हमारी रिकॉर्ड हो गई ना, वो फिर हमारी वैसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर में सब कुछ है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, आंखें भी है, नाक कान मुख सब कुछ है। तो ये मन ही एक्चुअली हमारा सूक्ष्म शरीर है और संस्कार उसकी ड्रेस है। कहते ना जब हम कभी कोई दिखाई देते हैं ना इविल सोल्स, उनकी ड्रेस कैसी दिखाई, काली गंदी दाग वाली ड्रेस, बाबा कई मुरली में बताते हैं दागो दागो वाली ड्रेस दिखाई देती है, उस पर दाग लगे होते हैं। तो संस्कार ही हमारी ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की। और ये अगर हमें दैवी गुण धारण कर लेते हैं, ब्राह्मणों के संस्कार धारण कर लेते हैं, है ना, दैवी गुण धारण कर लेते हैं, तो हमारी चमकीली ड्रेस हो जाती है। तो ये जो है ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये हमारी जो हमारी अमात्मा, हम आत्मा परमात्मा से जो संबंध जोड़ते हैं ना, अरे सर्व संबंध से जब याद करते हैं और निरंतर याद करते हैं, तो वो संबंध जो है उसके द्वारा जो याद हम आत्मा में आती है, स्पेशली इसका माइंड स्थिति के द्वारा जब याद आती है, तो वो फिर इसके द्वारा मन के माध्यम से, और जो संस्कार जब हमारी ड्रेस जो चमकीली ड्रेस हो जाती है, ये तो सूक्ष्म शरीर। फिर हम लोग इस सूक्ष्म शरीर के साथ दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट शिव बाबा क्या करते हैं, ब्रह्मा के साकार ब्रह्म, जो अभी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा हमें के रूप में, अव्यक्त ब्रह्मा को मां के रूप में जैसे हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। हमारी बर्थडे गिफ्ट है, ब्राह्मण जन्म की बर्थडे गिफ्ट कौन सी है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या है, बेसिक कुछ और नहीं है, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ भरी हुई है, जिस बुद्धि में ये मुरली भरी हुई है, जिस बुद्धि में एबीसीडी भरा हुआ है, आत्मा परमात्मा मतलब बाबा और आत्मा परमात्मा के सर्व संबंध, मुख्य नौ संबंध की हम बात करते हैं, वैसे तो हर संबंध हमारा बाबा के साथ है, हम हर संबंध की अनुभूति करें, ड्राइवर बन रहे हैं तो ड्राइवर, गाड़ी चलाए तो गाड़ी ड्राइवर बना लें, कपड़े धोने धोबी बना लें, जो भी संबंध हमें चाहिए बाबा को हम उससे में वैसा संबंध यूज कर सकते हैं, पर मुख्य नौ संबंध की अनुभव की, क्योंकि हर संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है, और जैसा समय वैसा बाबा को यूज करना, जैसा भी समय हो वैसा बाबा को यूज करना ही निरंतर योग की विधि है, निरंतर याद की विधि है। तो एक जो मैं संस्कारों की बात मैं कर लूं, एक संस्कार जो होते हैं, संस्कार जो हमारे सबसे बड़ी खतरा, हर बीमारी का कारण हमारे संस्कार है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो गई हो, चाहे डायबिटीज हो गई हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो गया हो, किसी को माइग्रेन होता हो, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया हो, किसी को एसिडिटी बनती हो, किसी को कब्जी रहती हो, चाहे किसी को घुटने खराब हो गए हो, कमर की हड्डी खराब हो गई हो, गर्दन की हड्डी खराब हो गई हो, किसी को कोई बीमारी भी हो गई हो, फॉर दैट मैटर कैंसर हो गया हो, तो ये संस्कार कड़े संस्कार होते हैं, और इन कड़े संस्कार को तोड़ना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। कोई बीमारी मैंने देखा जो पिछले 23 साल में 24 साल में जो मैंने रिसर्च हुई है, हार्ट की रिसर्च हुई है, जिसे हम सीएडी प्रोग्राम भी कहते हैं, कैड प्रोग्राम भी कह देते हैं, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी भी कहते हैं, और इसमें जो देखा है, और खुद मैंने अपने साथ देखा, जो मुझे हार्ट की बीमारी 96 नवंबर में हुई, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुई, हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई, मुझे फरवरी में पता लगा, तो उसका कोई इलाज नहीं था, बहुत इरेगुलर हार्ट बीट होती थी और उसके कारण मुझे बहुत बेहोशी जैसे हो जाती थी, बहुत सीवियर एंजाइना होता था। तो ये जो कड़े संस्कार है ना, ये इसके जड़ होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार होते हैं जो, और उनको हम नॉर्मल समझ के चलते हैं, अच्छा समझ के चलते हैं, उनको हम बुरा नहीं मानते, जिसको बाबा का मूल संस्कार बोल देते हैं, किंतु इन कड़े संस्कारों के बारे में बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि दधीची ऋषि ने क्या किया, यज्ञ में हड्डियां स्वाहा की। तो हड्डियां स्वाहा करने का मतलब नहीं है, दधीची ऋषि का अर्थ क्या है और हड्डियां स्वाहा करने का अर्थ क्या है, दधीची ऋषि माना दृढ़ता के साथ, हड्डियां माना कड़े संस्कार, पुराने कड़े संस्कार जो मिटते नहीं है, किसी को क्रोध करने का संस्कार है, किसको जल्दीबाजी करने का संस्कार है, किसको बात बात में आंसू लाने का संस्कार है, कई सेंसिटिव नेचर के हैं, बहुत कोई बहुत भावुक हो गए हैं, कोई अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। कहा भी जाता ना हार्ट की बीमारी के बारे में कहते हैं ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, कहते हैं ना। अपने मन की बातें टेंशन किसी को शेयर ही नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए तो वो अपने अंदर ही दबाते रहते हैं, किसी को नहीं कहेंगे। कहेंगे मैं इसको शेयर क्या करूं, इसको टेंशन हो जाएगी, इसको क्या पता बीमारी के बारे में। विदेश में तो लोग कुत्तों से भी शेयर करते हैं। हम बाबा को शेयर करते हैं सोने के पहले, मैंने देखा है हार्ट के प्रोग्राम में देखा है, जो जितनी सच्चाई से बाबा को दिल से लेटर लिखता है, सच्चाई से अंदर बाहर जो एक हो जाता है, उसके हार्ट की ब्लॉकेजेस खुल जाती है। चार लेवल पे हमें बाबा को अपने मन की बातें शेयर करनी होती है। पहले तो मन के लेवल पे, मन में कई सारी बातें होती हैं हमारे, बहुत सारी बातें आती हैं जो मन के लेवल पे ही आती हैं। हर बात मन के बारे में हम शेयर कर लें बाबा को, बाबा मेरे मन में आज ऐसे विचार आए, ऐसी भावना आई, मुझे वो बात याद आ गई, मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा फील हो गया। एक एक बात हम शेयर कर लें बाबा को, है ना। सकाश तभी जाएगा ना, साथ एनर्जी की एनर्जी तो आ गई, हमने योग कर लिया, अमृत वाला बहुत अच्छा हो गया। अब नीचे कैसे जाएगा, छन्नी यहां पर लगी हुई है, ये सूक्ष्म शरीर छन्नी है, वो नीचे कैसे जाएगा। अगर ये मेरे मन में यही मेरी स्मृति में मैंने फंसा के रखी है, मेरी ब्लॉकेजेस हैं, मैंने मन में टेंशन उसको शेयर ही नहीं किया, हल्का ही नहीं किया, किसी को भी नहीं कहा, तो मेरी छन्नी तो बंद हो गई, सूक्ष्म शरीर में तो ब्लॉक आ गया, अब बॉडी में तो एनर्जी जाएगी नहीं। हार्ट को चाहिए प्यार, कौन सा प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्यार चाहिए, सेल्फलेस लव चाहिए, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर, मुझे अनकंडीशनल चाहिए। परमात्मा का प्यार हमारे लिए कैसा है, बिना किसी शर्त के है, दिल से है, सम्मान के साथ है। बाबा कितना भी कोई बच्चा गलती करे, बाबा कैसे उसको देखता है, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, कितना प्यार से हमसे बात करता है, कितनी मीठी दृष्टि देता है। जो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो बाबा को सामने से निकल जाते कोई बात नहीं, जो ज्यादा थोड़ा कमजोर सा होता है उसको बाबा बुला प्यार से दृष्टि देता है, बुला के सेब भी दे देता है, क्योंकि उसको ज्यादा सकाश की आवश्यकता है ना, तो बाबा उसको ज्यादा देता है। तो ऐसा जो है ना, जो हमें, हम जब सच्चाई से लिखते हैं, मन के बारे में लिखते हैं सारी बातें बाबा को, अंदर बार सेम हो जाते हैं, फिर शरीर के बारे में लिखते हैं, शरीर में मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ है, बाबा मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा तो नहीं, मेरी हार्ट तो नहीं खराब हो गई, मेरे पेट में कुछ कैंसर तो नहीं हो गया। कई बार मन में ऐसे ही बहम हो जाते हैं ना कई सारी बातें, मेरे को ऐसी कोई गांठ तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो, जो भी डर लग रहा है मन में, कुछ भी बात लग रही है, किसी ने कुछ आज पर कोविड फैला हुआ है, कोरोना तो नहीं मुझे हो गया ना, मैं उससे बात की थी कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, वहां पर फला जगह मास्क नहीं लगाई थी, कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो वो एक एक बात बाबा को कह दो बाबा। फिर परिवार होता है, लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, लिखो बाबा, बाबा वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे ऐसे कहते हैं, मुझे मेरे को मेरी बात बात में मेरी इंसल्ट करते हैं, बार बार मुझे ऐसे करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहा कि तुम मेरे को ऐसा बोल देते हैं, है ना। लिख दो बाबा को तो लिख दो ना, किसी को नहीं कह सकते, बाबा को तो लिख सकते हो ना, लिखो। और फिर किसके बारे में, जो आपकी सेवा है, चार जगह टेंशन हो सकती है, मन में, तन में, परिवार में और सेवा के फील्ड में, चार जगह टेंशन होती है, चारों की बाबा को लिख दो, आधा पेज लगे, एक पेज लगे, दो पेज लिखो, लिखो। मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी नींद आएगी आपको, इतनी क्वालिटी की नींद आएगी, लिख के दो ना बाबा को, साइन करके, और 000 पे फैक्स कर दो, बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, कभी भी एंगेज नहीं होता है, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और जो भी सारे दिन में बीता मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0, 10 डायल करें तो कहां जाता है लेटर, हमारा फोन कहां जाता है, स्टेट के बाहर, 20 डायल करो तो कंट्री के बाहर, और 30 डायल करी तो कहां जाएगा, वर्ल्ड के बाहर, नहीं विश्व के बाहर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसे हम बाबा को अपने मन की बातें सारी शेयर कर लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सूक्ष्म शरीर की बात है कि सूक्ष्म शरीर हमारा लाइट का बन जाए, तो हमें क्या करने का है, तो मैंने बताया दधीचि के माफिक इन कड़े संस्कारों को, यज्ञ माना याद और ज्ञान, याद और ज्ञान में, ज्ञान रूपी यज्ञ माना बाबा की याद में और ज्ञान सत्य की समझ में से स्वाहा कर दो, भस्म कर दो। जब तक कड़े संस्कारों को नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी बीमारी नहीं जाएगी। क्योंकि जो आपने डायबिटीज हुई, डायबिटीज इसलिए नहीं हुई, डायबिटीज क्यों हुई, क्योंकि जरूर आपने अपने जीवन में कड़वाहट पैदा की हुई है, संबंधों में कड़वाहट है, दूसरों को पिछले जन्म में या इस जन्म में आपने कड़वाहट दी है, उनके जीवन में बिटरनेस लाई है, इसलिए आपको डायबिटीज हो रही है। फेफड़े कमजोर, दूसरों की शांति भंग की हुई है, दिल कमजोर माना दूसरों के जीवन में मतलब क्रोध करके अपने जीवन का भी दूसरे के जीवन का भी नुकसान किया हुआ है, कहीं ना कहीं अपने मन की बातें टेंशन अपने अंदर इतनी भरी हुई है जो किसी को शेयर नहीं करते हैं, खुशी मतलब अपनी खुशी आपने खुद की गायब की हुई है, आप संतुष्ट नहीं रहते हो, जीवन से संतुष्ट नहीं है, है ना लिवर। तो अभी मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूं। तो हम जो है अपने को आत्मा समझ के जब परमात्मा से सबसे स्पेशली जो सुबह सुबह अमृत वेले, हमारा एक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है जिसको हम जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस में लगी है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, उसमें घड़ी लगी है, उस घड़ी में उस घड़ी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। भगवान ने जो हमें जो बाबा ने जो दिनचर्या बना के दी उसी अनुसार बना के दी है। अगर हम 4 से 4:45 के बीच में, इसमें रिसर्च है, अगर 20 मिनट आनंद की स्थिति में चले जाएं, आनंद का मतलब क्या है, आन मींस बंधन, अंध मींस बियॉन्ड, बंधनों से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, आत्मा देह और देह के दुनिया के बंधन के पार अपनी आत्मी अपनी ओरिजिनल स्थिति में मतलब बिंदी स्थिति में मतलब कहा चले जाए, सर्व बंधनों से पार, गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त माना आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, देह और देह की दुनिया के बंधन के पार निकल करके और परमात्मा लव में लीन हो जाए, लव लीन हो जाए, ये जो स्थिति है एक्सटेसी की स्थिति, रोमांच की स्थिति है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि उस समय आपके हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन्स और पिट्यूटरी से 8 हार्मोन्स उस समय अर्ली मॉर्निंग रिलीज होते हैं और इनका कनेक्शन आनंद से है, और एक होता है पीनियल ग्लैंड से हार्मोन मेलेटोनिन, मेलेटोनिन शायद आप निकलता है किंतु उस समय पीक होती है, तो वो हार्मोन का बैलेंस में निकल गया तो अगले 24 घंटे में आपके सारे मन और तन की बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इस समय अमृत वेला, इस समय अमृत बरसता है, इस समय अमृत बरसता है, किस समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करने पर। ब्राह्मणों की निशानी है, सच्चा ब्राह्मण वो जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन मिस ना करे, क्योंकि उसमें ही हमारी ये परमात्मा की आज्ञा है, उसमें ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, क्योंकि उस समय हम जब नींद से उठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 या 3 होती है, आनंद की स्थिति से उठते हैं, आनंद माना 2 या 3 फ्रीक्वेंसी, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा की 1 है, और मैं 2 से उठा 3 से उठा तुरंत, शिव बाबा 0 ब्रह्मा 1 और मेरी 2 कनेक्शन लग गया, है ना, कनेक्ट करंट आनी शुरू हो गई, सत्य की समझ आ गई, रियल में फील हुआ कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, एक संबंध के अनुभव। बाबा कहते ना अमृत वेले तुम जो चाहो बाबा से वरदान लेना चाहो ले सकते हो, बाबा को जैसे मनाना चाहो वैसे बाबा मान जाता है, जो जैसे रिझाना चाहो वो आपको सब कुछ सब अनुभूतियां करा देता है, आपको सब तरह की अनुभूति करा देता है। तो अमृत वेले का ऐसा वंडरफुल समय है जो हमें करना चाहिए। फिर क्या करने का है हमको, अब हमारी जो आता है सूक्ष्म शरीर की बात है, सूक्ष्म शरीर के लिए मेन चीज क्या है, सूक्ष्म शरीर माना मन, और मन को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, मुरली, मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, जितना मुरली को घोटो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाओ आपका सूक्ष्म शरीर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। 8 बजे तक मुरली को घोटते रहो मैं तो अमृत वेला करते ही मुरली को घोटना शुरू करता हूं, मुरली पढ़ी फिर मैं स्नान करना करना से भी बस मुरली सुनता रहूंगा पढ़ता रहूंगा बार बार घूटता रहूंगा। 8 बजे तक मेरा वही काम है, मुरली के बाद 8 बजे के बाद भी करता रहता हूं किंतु 8 बजे तो पक्का, और फिर एनर्जी क्या होगी, 7वीं एनर्जी यहां आ जाएगी बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो है शरीर के बाहर एनर्जी जाए कवच बनाने के लिए, उसके लिए क्या करो, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बना, बाबा की याद में भोजन खाओ, एकदम द्वार की तरफ मुख करके भोजन खाओ, इसकी तरह देख के भोजन क्यों खाने का, बात तो करनी नहीं, बाबा की याद में भोजन करो, फिर शुद्ध सात्विक सैर बाबा की याद में 45 मिनट सैर करो, बातें करते हुए नहीं, बातें करो तो उल्टा नुकसान होता है, वो भी 45 मिनट सैर कर लो, और फिर शुद्ध सात्विक नींद, बाबा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते हुए लेटर लिख के चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा की याद गोद में सो जाओ, तो जब इस तरह से हम करेंगे, और फिर अगर कोई दवाई खानी भी पड़े दवाई भी खा लो, क्योंकि वो डॉक्टर का हिसाब किताब है, वो भी पूरा हो जाए। तो इससे क्या हो, एनर्जी आपके आसपास, ये सातों एनर्जी आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी, ये आपका कवच बन जाएगा, इसको ऑरा कहते हैं, हवामंडल कहते हैं। तो अगर इस तरह से जब आप प्रयोग करेंगे तो आप कोई भी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जो कड़े संस्कार वो खत्म कर दें, स्थिति वंडरफुल हो जाएगी। इस तरह से सकाश सातों एनर्जी का अपना प्रयोग करें डिफरेंट अंगों पर। सातों एनर्जी बॉडी के हर अंग को चाहिए, कि तो एक अंग एनर्जी विशेष चाहिए, वो हम कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।